धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आययाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, लोयालोयपयासं, गोदमथेरं पुनोजिनं वीरं, नमि ऊणखेतसुत्तं, जहोवये संपयासेमो। आचार्य श्री भीमसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलिया आचार्य। इसमें जो प्रथम खंड है जीवस्थान नामक, उसमें अपना विषय है क्षेत्रानुगम का, और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 43 पर हम आ गए, 43। अभी अपनी बात यहाँ क्षेत्र की चल रही है, किसी भी अभी गुणस्थान पहले गुणस्थान वालों का क्षेत्र की बात चल रही है, और उसमें हमको 10 बातें बताई, 10 पद जिसको कहते हैं, कौन से, उनका रहने का ठिकाना स्वस्थान, स्वस्थान विहार करके जाने वाले द्विंद्रिय आदि की अपेक्षा कहते हैं, तो उसको कहते हैं विहार व स्वस्थान। फिर 7 प्रकार के समुद्घात लेना है जिस गुणस्थान में जो पॉसिबल है, तो उसमें से पहला पंक्तियों से देखे थे हमने समुद्घातों में किस किस को लिया था, वेदना, कषाय, वैक्रिक, मारणांतिक, उसके बाद तेजस है, आहारक है और केवली समुद्घात। ये 7 में से जो एप्लीकेबल है वो लगाना, और एक है उपपाद, यानी मरण के मरकर जो जन्म का पहला समय, वहाँ जितने प्रदेश फैले हुए होंगे उस अपेक्षा से बात करते हैं। अब यहाँ विहार वत्स, विहार करने वाले ने गमन करने वाले जीव कौन है, तो द्विंद्रियादि है, त्रस जीव है,
तो
एकेंद्रीय गमन, वो तो उनकी, वो उनका ऐसा गमन नहीं है, उनकी विक्रिया ने उनके शरीर के साइज कुछ चेंज होना वो बात अलग है, परंतु ऐसा गमन की बात उनकी नहीं होती। ये पानी का बहना या वायु का उसको गमन नहीं कहते, जैसे विहायवती नाम कर्म का उदय नहीं है, आती बात। हाँ वो तो वैसा जाना होता है, पर वो तो चल कर जाना जिसको कहेंगे, गमन करके जाना, वो उनका विहार नहीं कहलाता उन्हें। पानी का बहना कहेंगे, वो तो ढलान की ओर बहता है, पर पानी का वो विहार नहीं कहलाएगा, वो पानी चल के जाता ऐसा नहीं कहेंगे हम। ये मैथा ऋषि की बहुत विस्तार से बात हुई थी, सभी उनको लगाए थे। तो तेजल आपसे प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि में ये 10 के 10 लगेगी कि नहीं लगेगी? हमने 10 बातें बताई, वो सब लगेगी कि नहीं लगेगी? कौन कौन सी लगेगी, 10 बातें रिपीट करो। स्वस्थान, विहार व स्वस्थ,
हाँ,
पहले वेदना,
वेदना
क्रम से याद रखो,
वेदना,
कषाय,
वैक्रिक
हो सकता है, मरणांतिक,
मरणांतिक
आगे,
तेजस,
तेजस समुद्घात, यानी वो शुभ और अशुभ किसके होता है?
नहीं वो तो
मुनियों के
होता है,
तो मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा। आहारक,
आहारक नहीं हो,
केवली,
केवली
आई ना, उपपद होगा, इस अपेक्षा से हमने बातें देखी थी। अब इसके बाद सासादन आदि की बात चली थी, तो ये बात अपनी यहाँ से शुरू हुई थी, 39 पेज पर चालू हुई थी, किस, हाँ 39 से 3 नंबर के सूत्र के अर्थ में हमने देखा था, सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक, अभी उसमें बाद में बताएंगे सहयोगी की अपेक्षा से कुछ विशेषता है, क्योंकि सहयोगी तो केवली समुदाय भी होता है, तो क्षेत्र में एक समय में पूरा लोग भी कवर करते, एक भी जीव हो तो भी, उसके बाद में बताएंगे बाकी जीवों की अपेक्षा। वो गुणस्थान वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो साधन वाले चारों गति में है, परंतु उनका स्वस्थान अपना रहने का ठिकाना है संगी पंचेंद्रिय, तो लोक का असंख्यात भाग ही होगा। तो ये बात वहां लिखी थी 39 पेज पर। अब यहां उसमें भी 10 अपेक्षाएं लगानी है, तो 39 पेज का लास्ट शब्द जो है ना, लास्ट पंक्ति में लास्ट क्या लिखा है, स्वस्थान स्वस्थान। फिर आगे देखो 40 पेज पर, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात रूप से परिणत हुए। अभी तीन गुणस्थान लिए, सासादन यानी दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि इसमें तो चारों ही गति है और उसमें देवों की प्रधानता लेते हैं, पांचवे में तो तिरंज मनुष्य की अपेक्षा आएगी, इसलिए उनकी बात छोड़िए, तीन गुणस्थानों की बात पहले उठाए। तो सासादन आदि में ये तीन लेना, कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो कहते हैं लोक का असंख्यात क्षेत्र में रहते भाग में। ये जो क्षेत्र जब जब हमको बताना है, पूरे लोक के कितने भाग में, ऊर्ध्व लोक के कितने भाग में, अर्ध लोक के कितने भाग में, तिर्यक लोक के कितने भाग में, और मनुष्य लोक जो है ढाई द्वीप उसकी अपेक्षा कितने भाग में, क्या उसके असंख्यात गुणा है कि उसका मनुष्य लोक में है, वो सब बातें हमको पांचों लोक की अपेक्षा क्षेत्र बताना है। इसको कहते हैं पांच लोक, यानी सामान्य लोक, पूरा लोक, ऊर्ध्व लोक, अधो लोक, तिर्यक लोक, मनुष्य लोक। तभी सासादन आदि की बात बता रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र में ऊर्ध्व लोक आदि तीन लोकों के, तीन यानी ऊर्ध्व लोक आदि तीन कौन से हुए, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक, तो तिर्यक लोक के भी असंख्यातवे भाग में, हाँ यहाँ तिर्यक लोक सामान्य से उसको कहा है, और ढाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। तो उसके पर शंका पूछी गई थी कैसे, क्योंकि वहां मुख्यतः किसके, सौधर्म ईशान संबंधी देवराशि की प्रधानता है। अब उनकी अवगाहना कितनी, उनकी एवरेज यानी उनकी अवगाहना मुख्यतः से लेंगे तो वो सात हाथ ऊंचाई वाले हैं, और सात हाथ ऊंचाई है तो उसके एक हाथ के 24 अंगुल होते हैं, तो सात हाथ के 168 अंगुल होते हैं। अब उनका विष्कम्भ कितना है, देवों की जो हाइट है उसके दसवें भाग प्रमाण उनकी चौड़ाई होती है, नारकियों की जो हाइट होती है वो उसके आठवें भाग प्रमाण उनकी चौड़ाई है, और मनुष्यों की जो हाइट है उसके नौवें भाग प्रमाण चौड़ाई, वो नीचे लिखा है कि क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, गोलाकार मान लेते हम तो जो व्यास विष्कम्भ होगा और जो हाइट है उससे पहले क्या गोलाकार का क्षेत्रफल निकालेंगे और हाइट से गुणा करेंगे, तो एक विष्कम्भ कितना लेना, तो हाइट मालूम है सात हाथ तो हाइट है, तो उसके दसवें भाग प्रमाण देवों का विष्कम्भ होता है, ये बात यहाँ लिखा है। देखो शंकाकार पूछते हैं ना, ये सब हमने कल पढ़ा था, दोबारा ले रहे जरा, उससे देने हाइट के दसवें भाग प्रमाण विष्कम्भ क्यों लिया, तो कहते देव मनुष्य और नारकियों का उच्छेद मिला, 10, 9 और 8 ताल के प्रमाण से कहा गया है, यानी उसके दसवें भाग, नौवें भाग और आठवें भाग, यानी उसके वो 10 ताल प्रमाण है, 9 ताल प्रमाण है, उसका अर्थ क्या है, उनकी अपनी अपनी जो 20 ताल है ना, वो पाम जो हम ऐसे लिखते नहीं, ऐसे कितना है, स्कूल में हम कहते हैं तुम कितवीत हो, वीत यानी ऐसा कितने वीत हो आप नहीं कह देते, क्योंकि मराठी में कहते हैं मैं आठवीं में, मैं आठवीं हूँ, आठवीं हूँ, आठवीं में आठवीं का हूँ, मैं छठवीं का हूँ, ऐसा हम उसका अर्थ उल्टा लगाते थे। ताले नहीं, वो तो वीत, वीत कितने वीत, हाँ वीत, या हम ऐसा भी ले सकते हैं कि उसके प्रमाण जो है उसका कि जो हाइट है उसके दसवें भाग प्रमाण जो उसका, उसको यहाँ ताल कहा, या यहाँ ताल का प्रमाण जो कुछ ले लेंगे उसके 9 गुना उसकी हाइट होती, इस तरह से उसका प्रोपोर्शन ले लेना। हमने वो ताल का अर्थ निकाला था पाम ऑफ हैंड, ऐसा उसमें लिख के रखा है लास्ट टाइम डिक्शनरी में देखा था हमने। हाँ अपन वित मानते हो ना, देव जो है देवों की हाइट से उनकी विड्थ 10वें भाग प्रमाण है, मनुष्यों के हाइट से उनकी जो विड्थ है वो 9वें भाग प्रमाण है, और नारकियों में हाइट से 8वें भाग प्रमाण उनकी विड्थ है। कैलकुलेशन उनके एरिया एक जीव की अवगाहना कैलकुलेट करने के लिए ये माप 40 पेज पर हम दोबारा ले रहे हैं पीछे। स्वस्थान स्वस्थान यानी रहने का ठिकाना, विहारवत स्वस्थान। उपपाद पहले दो स्वस्थान हुए, फिर 7 समुद्रात हुए, और लास्ट में उपपाद हुआ। नहीं नहीं स्वस्थान के दो भेद। हाँ हाँ? अभी देवों की एरिया कैसे कैलकुलेट करना। हाँ हाँ उससे तो उन्होंने बताया 7 हाथ, क्योंकि मेजॉरिटी सौधर्म में ईशान की है और उसके अंगुल की है, 1 हाथ के 24 अंगुल, 7 हाथ के 168 अंगुल, और 168 का 10वां भाग उनकी विड्थ होगी डायमीटर। तो फिर उसको निकालने का तरीका बताएं, व्यास ने जो विड्थ बताई उसके आधे का वर्ग किया, व्यास कितना था 168 का 10वां भाग था, उसको आधा किया। उस पेज में नीचे करेक्शन है कि आपके पेज में ब्रैकेट में लास्ट लाइन ब्रैकेट 168 डिवाइडेड बाय 10, और वहां डिवाइडेड की साइन है वो मल्टीप्लीकेशन की चाहिए, इनटू 1/2 आधा किया ना। प्रेरणा बहन के उसमें है क्या, नहीं है करेक्शन? अच्छा अच्छा उसमें भी नहीं था,
मल्टीप्लाई करना
है। हाँ मल्टीप्लीकेशन आधे से ना, क्योंकि उसका आधा करना है और आधा करके उसका वर्ग करना है, फिर उसको गुणा करना और फिर उससे से गुणा करना। ख्याल में आई बात? हाँ वो सब करके उन्होंने बताया, उसके एरिया भी कितने कैलकुलेट करना, 41 पेज पर वो सब बातें बताई थी। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो उच्छेद अंगुलों में आया है, अब उसको प्रमाण अंगुल करना है। तो 500 उच्छेद अंगुलों का एक प्रमाण अंगुल होता है, ऑर्डिनरी अंगुल होते तो हम 500 से भाग देते, परंतु यहाँ घन अंगुल है इसलिए 500 के घन से भाग देना पड़ेगा। उच्छेद अंगुल में जो हमने उच्छेद घनांगुल में हमारी जो यहाँ जो, क्योंकि 3 डायमेंशन का गुणा किया ना, अंगुल इंटू अंगुल इंटू अंगुल, तो उसका घनांगुल हुआ। अभी उसके प्रमाण अंगुल बनाने हैं तो 500 इंटू 500 इंटू 500 से भाग देना है, 500 के घन से भाग देना है। वो सारा कैलकुलेशन करके उन्होंने इसमें बताया। अभी आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 42 पर। भी करेक्शन है, देखो जो बीच नीचे का पैराग्राफ है ना उसमें 6 लाइन में यहाँ लिखा इन पूर्वोक्त गुणकारों से, है ना, उसके बदले गुणकारों से वो काट देना, उसके बदले एक वाक्य लिखना है, बाजू में लिखो साइड में या ऊपर कहीं नीचे, तो इन पूर्वोक्त के बाद ऐड करना है गुणकार गुणित, यानी इन पूर्वोक्त गुणकार गुणित अवगाहना गुणित राशि से। यानी पहले जो गुणकार बताया है जो अवगाहना का, उससे गुणित राशि, क्योंकि एक जीव की अवगाहना मिली, अब इससे देव जो टोटल राशि उसको गुणा करेंगे तो हमें वो एरिया मिलेगी। एक जीव की अवगाहना मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ जीव। अभी उसके 2 लाइन नीचे आते हैं गुणकारों के ना, उसके नीचे के नीचे की लाइन राइट साइड में एकदम उतना इन गुणकारों से लिखा है ना एकदम राइट में, तो गुणकारों से के बदले राशियों से करना। हाँ, ऊपर की फिगर भी करेक्शन करनी है पहली लाइन में। 9261 के डिवीजन में 1953125 लिखा है, उसके बदले में 488 288 488 28 125। वो बोल रहे थे ना, पुस्तक है उनके पास, कोई बात नहीं। हाँ, आपको जहाँ बैठना है वहाँ बैठो। ये दो करेक्शन किया ना, हाँ तीन हो गए इस पेज पर। गुणकार गुणित अवगाहना गुणित राशि से, इतना बड़ा वाक्य लिखा। गुणकार गुणित अवगाहना गुणित राशि, फोर डबल एट जो है ना, देखो देखो फिर से पढ़ते हम, पहली पूरी लाइन में पढ़ रही। इसके प्रमाणांगुल हुए, प्रमाणांगुल करने ना 40 पेज पर जो लास्ट लाइन में जो इक्वेशन बताया है, उसका स्क्वायर है। अभी प्रमाणांगुल हुए उसके बाद क्या लिखा है, 168 डिवाइडेड बाय 20, इसको एक ब्रैकेट करो और उसका स्क्वायर है। स्क्वायर तो उन्होंने लिखा है, ब्रैकेट अगर नहीं करेंगे तो अर्थ क्या होगा, केवल 168 का स्क्वायर हो जाएगा। आप में करेक्टेड है कि क्या नहीं है, ये पहले जैसा ये छपा हुआ, वो ब्रैकेट कर देना उसको, और दो के पहले ब्रैकेट करना, दो बाहर रखना ब्रैकेट के, पेंसिल से करो नहीं तो, पेंसिल से करो नहीं तो करे। अभी आप तब तक यह करना, ये इसको ये बराबर है कि नहीं आपको देखना है ना। ऊपर है 9483264 डिवाइडेड बाय ये इतने जो जीरो है ऊपर ऊपर, तो उसको हमको निकालना है। तो हमने वहाँ 1024 से भाग दिया था, आपको मोबाइल पर करके देखो उसमें है। हाँ, अभी 16-16 से भाग दो ना आप, तो भी आ जाएगी बात। देखिए 16 का तो भाग आप डायरेक्ट दे ही सकते हो ना, देखो ना ऊपर क्या है, 94 अब करके देखो, 9483264 और नीचे है 5 के ऊपर कितने जीरो है, 10 जीरो, 10 जीरो। अभी 16 से पहले भाग दो, 16 85 14 रह गए, 148 148 रहेगी ना, 16 90 44 से 4 रहेगी, 16 32 11 रहेगी, 16 7 12 उधर से ना, 16 96 16 7 12 उधर से ऊपर लिया 6 जीरो आ गए, 16 64 ये पहला भाग दिया। ऐसे करते जाओ, नीचे करना है कितना है, पहला 16 3 48 दो रह गए, पहला जीरो लिया, 16 1 16 4 रह गए, दूसरा जीरो लिया, 16 2 32 8 रह गए, तीसरा जीरो हुए, 16 85 ये आगे जीरो जीरो कितने लिए, 3 जीरो लिए थे, आगे 7 जीरो आ जाएगा ना, सात बार जीरो। अभी ऐसे और एक 16 से गुणा करो, हमने डायरेक्ट उसको 10 से 10 24 से भाग दिया था। मैंने वो संख्या आती है कि नहीं आपको कंफर्म करना है ना, आपके हाथ में है ना वो मोबाइल, ले लो। यानी सबका टाइम इधर टाइम बचेगा सबका। देखो हम 16 से तो दे दिया ना, अभी हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। 3125 है, 3125 और ऊपर 70 है ना, आया। हाँ डिवाइडेड बाय 16 नहीं करना है क्या? अभी बड़ी भी संख्या ले सकते हैं ना, 256 भी, कोई बात नहीं, हम 16 ले लेंगे। कहाँ गया 16? तो आपको फिगर लिखने में अच्छा रहेगा, वो लिखना है, लिखो लिखो लिखो। नहीं पहली संख्या लिख के रखो तो ख्याल में आ जाएगी। लिखो, ये हमारे ऊपर है 9483 264 और नीचे था 5 के ऊपर 10 जीरो। उसका उत्तर हमने निकाला था, ये पार्टी पर था, वो 592704। यानी वो डिवीजन में हमने 16 से भाग दिया ना, 592704। नहीं नहीं 2704 डिवाइडेड बाय 3125 और ऊपर 70। अभी उसको फिर 16 से भाग देते हैं, तो नीचे कितना आया वो पहले लिखो, फिर ऊपर की संख्या हम देख के बताएंगे आपको। नीचे आया 19531 19531 यानि ऊपर 25,000
और
25,000। हाँ ऊपर की संख्या अभी मैं बताऊंगी। बस 25000 19531 25000। अरे वहाँ 4 और 7 11 डिजिट थे, 5 और 5 10 डिजिट हो गए। हाँ अभी जरा बड़ी संख्या 16 × 16 256 हो गए ना, अभी हमने किस वहाँ लिखा था 1024। हाँ अभी किससे 1024 को 424। अच्छा अभी 4 से ही करना है, बस अभी 4 से भाग दो। अभी नीचे क्या था अपना, फिर मैं लिखती हूँ 19।
इसको ऊपर का बाकी है अभी ना?
अरे ऊपर का बाकी, पहले ऊपर का लिखते थे 592704। 592704 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 37044। अभी 4 से भाग देंगे, टॉप में 37044। अभी उसी को हम भाग देते हैं, 16 से भाग दिया तब आई थी ये बात, अभी इसको 4 से भाग देंगे। अभी ऊपर पहले भाग देते 37044 डिवाइडेड बाय 4 करना है ना अभी 9261 जो वो बताए वो बराबर 9261 अभी डिवीजन में लेना है। क्यों आया ना उत्तर? जीरो फोर फोर था अभी बोला। हाँ अभी नीचे का बोल रही हूँ 19531 था ना वो उसको कर रही हूँ 19 बोलना जरा 5312 5 1 2 3 बार जीरो अभी इसको 4 से भाग देना है क्योंकि उनकी संख्या ओरिजिनल लिखी हुई बराबर नहीं है हमको देखना है 4882 8 1 2 5 0 1 2 5 लिखा है ना 5 0 कैसा 5 आना चाहिए तो बीच में हमने जो पहली बार पकड़ा वहाँ कहीं जीरो का मिस्टेक हुआ होगा। उल्टा करके गुणा करके देखते इंटू 4 इंटू 16 इंटू 16 करेंगे कुछ बात नहीं हम समझ गए। मुझे फास्ट विचार किए बिना सुस्ता नहीं है ऐसा है फिर दोनों एकदम 3 4 5 7 हाँ इंटू 16 करना है ना इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो हो गए एक जीरो हमने साथ में एक्स्ट्रा पकड़ा था
तो वहाँ पे 6 लिखने का
एक मिनट अभी मैं वहाँ एक जीरो कम करती हूँ ना इसमें से। हाँ अब हम डायरेक्ट हम 10 24 से भाग देती हूँ मैं डिवाइडेड बाय 1024 इज इक्वल टू 4882 8 1 2 5 ये बराबर है अपना बीच में हमने जो 7 जीरो पकड़े थे ना वो 6 जीरो होने चाहिए। छः जीरो चाहिए 6 0 हाँ हाँ आपकी क्वेरी बोलो 6 0 हाँ 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 ऊपर 37044 और नीचे 19535353 1 2 5 0 5 हाँ ऊपर 3 0
अभी 3 0 नहीं आएंगे ना क्योंकि हमने एक कैसेस किया 2 ही 0 हो जाएंगे वहाँ पे
एक मिनट नहीं नहीं वो केवल 7 0 की बात कैंसिल करनी
तो इसमें कर दो
एक मिनट। हाँ देखो ये 6 0 आ गए ना हम 6 0 को हमने 16 से भाग दिया था नहीं 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 अभी 2 0 ही आते हैं।
हाँ 2 0 ही आएंगे
2 5 के ऊपर 2 0 आ गए
1 9 5 3 1 2 5 0
उसको 4 से भाग देंगे तो 4 8 8 जो हमने नीचे लिखवाया है वही है
नीचे।
अच्छा नीचे का बता रहे डायरेक्ट नीचे की बात अपनी चल रही है नीचे 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 का ही अपना कंफ्यूजन था ऊपर का तो हमने करेक्शन कर लिया है पूरा नीचे का ही बता रहे क्योंकि हाँ 4 8 8 2 8 1 2 5 यानी हमने जो करेक्शन किया है वो उस टाइम तो कैलकुलेट करके लिखा था, ये हो गया ना, यहाँ करेक्शन कर दिया ना। हाँ अभी ये हो गया था पेज अपना, कल बातें ये हो गई थी। अब नेक्स्ट पेज निकालना, तो ये प्रमाण घनांगुल निकालने के लिए हमने 500 के घन का भाग दिया था। यहां तक तो अपनी बात हो गई है 43 पेज पर। अभी जो नया पैराग्राफ है वहां से पढ़ेंगे, यहां से अपना का विषय शुरू होता है। ये जो यहाँ पर लेफ्ट पेज पर वही फिर दोबारा सारा ही उन्होंने गणित ही उसी का गणित जो हमने अभी किया था उसी को समझाया। पेज नंबर 43 शोभा, नया पैराग्राफ मानांतिक समुद्घात, दूसरा पैराग्राफ, और उपपादगत सासादन सम्य दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टियों का इसी प्रकार कथन करना चाहिए। यहाँ समय मिथ्या दृष्टि को सोनी बिना बताना क्यों छोड़ा? अभी तो हमने तीनों का कैलकुलेशन किया था, तीनों के किस किस में लिया, स्वस्थान स्वस्थान में लिया, विहारवत में लिया, वेदना में लिया, कषाय में लिया और वैकृक में लिया, वैकृक समुद्घात में। अब अपनी बात मानांतिक और उपपाद की चल रही है तो उसमें हमारे सोनी बहन बोलेंगे। हाँ, तीसरे गुणस्थान वाले को छोड़ दिया, पहले तो तीसरे गुणस्थान के साथ कहाँ रहते हैं, कहाँ विहार करते हैं सब बातें ली, अब यहाँ दो ही गुणस्थान लिए। क्यों? उन्होंने बता दिया उत्तर, आपने नहीं सुना? आपने सुना नहीं सुना? क्यों नहीं लिया यहाँ उसको? नहीं नहीं बोलो, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है तो पहले तो मारणांतिक उसमें नहीं होगा। तीसरे गुणस्थान में ना मरण है ना मारणांतिक, इसलिए वहाँ दूसरे तीसरे जन्म भी नहीं होगा, इसलिए उपपाद को भी नहीं है मारण। हमें ये प्रश्न उठना चाहिए ऐसा क्यों, समझ नहीं आई बात? तो ये हमारे मयंक भाई ने भी उत्तर बता दिया था, ये भी बता। अब देखिए मारणांतिक समुद्घात, क्योंकि मरकर उसी गुणस्थान से अन्यत्र जाना है मारणांतिक में परभव में, तो मरण के पहले उनके प्रदेश फैले रहते हैं तो उस अपेक्षा से उनकी एरिया कैलकुलेट करनी है।
तो सबके नहीं रहते हैं ना?
क्या
सब जीवों के?
सब जीवों के नहीं, मन मेजोरिटी जाते हैं, मेजोरिटी का होता है। मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत यानी पहला समय जन्म का, सासादन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टियों का इसी प्रकार कथन करना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इसी प्रकार ने कौन सा लोक का, उर्दो लोक का, अधो लोक का और नहीं ये सबका असंख्यात भाग और मनुष्य लोक के असंख्यात गुण क्षेत्र में इतनी विशेषता है कि ओघ सासादन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि राशि को, यानी उनकी ओग सासादन समय दृष्टि का अर्थ है टोटल राशि, मारणांतिक करने वाले ने टोटल राशि आवली के असंख्यात भाग से खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे उतनी राशि उपपाद करती है, क्योंकि उपपाद में एक समय लेना है और मारणांतिक में अंतर मुहूर्त लेना है तो मारणांतिक की राशि ज्यादा होगी, उपपाद वाली कम है। तो देखो जो दूसरे और चौथे गुणस्थानों की जो टोटल संख्या है,
हाँ।
तो दूसरे गुणस्थान तो छावली तो रहेगा मैक्सिमम किसी, हाँ। का रहेगा तो यानी अंतर्मूर्त रहेगा असंख्या समयों तक, एवरेज हम लेते हैं। सासादन समय दृष्टि का तो काल बहुत तक भी चलेगा तो उनकी राशि भी ज्यादा है, क्योंकि जितना काल अधिक उतनी राशि है, और उपपाद में जो एक समय के लिए रहता है तो वो असंख्यात विभाग प्रमाण जी हो गए उसके अंदर, एट ए टाइम उपवाद करने वाले जो कम हो गए, इसलिए जो टोटल राशि है उसको असंख्यात से भाग देंगे
तो
उपवाद की राशि आएगी। तथा इस उपवाद राशि के असंख्यात बहुभाग प्रमाण जीव विग्रह गति से उपवाद करते, क्या कहना चाहते हैं, मेजोरिटी असंख्यात बहुभाग प्रमाण कैसे विग्रह गति से उपवाद करते। विग्रह गति से उपवाद करने में क्या होगा, ये मोड़ वाली गति, तो उनका तो लंबा दंड होगा, तो वहां तक प्रदेश फैले रहते पहले समय में, फिर दूसरे समय में वहां से आगे के मोड़ में चले जाते हैं। इसलिए दो बार आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ओघ राशि के भागहार स्थापित करने चाहिए। तथा एक कम आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ऊपर गुणस्थान स्थापित करना चाहिए। वो बीच वाला जो दंड है ना फुल स्टॉप, वो निकाल देना, वो निकाल देना। इसका अर्थ ये है उपपाद राशि के लिए क्या करना है, आवली के असंख्यात विभाग से भाग देना है, और उसमें जो संख्या आएगी, देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, आवली के असंख्यात विभाग के लिए कोई भी संख्या निश्चित को आप नौ मान लेते हैं, नौ संख्या आवली का असंख्यात भाग है हम मान लेते हैं, और जो टोटल जो संसाधन वाले जीव है, टोटल राशि कोई एक्स मान लो ना, एक्स राशि हमारी संसाधन की है, उसमें उपपाद वाली राशि निकालने के लिए हमने आवली के असंख्यात भाग से भाग दिया, इतने राशि उपपाद वाली है। अब उपपाद वाली राशि में से असंख्यात बहुभाग प्रमाण राशि तो कैसी है, विग्रह गति से जाने वाली, आवली का संख्या से भाग से भाग देकर एक भाग यानी बहुभाग लेना है, किसी भी संख्या को मान लेते हैं, हमारे पास 90 है, हमने उसको 9 से भाग दिया, कितनी आई संख्या 10 आ गई। अभी ये हम जरा बड़ी संख्या लेते हैं 900 लेते हैं, तो हमारे पास 100 आ गए, तो 100 मान लेते हैं हम उपवाद करने वाले जीव हैं। अभी इसमें से असंख्यात बहुभाग लेना है तो क्या करेंगे, फिर 9 से भाग देंगे, कितने आ गए एक वैल्यू 90, और रहे कितने, सॉरी एक वैल्यू आ गई 9 × 9 और पूर्णांक में अपूर्णांकों में कुछ आ गए, अपूर्णांकों में 999 ले लो ना, वही बात हो जाएगी, 999 लेनी पड़ेगी, 111 हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम इतनी बात लेते हैं, 900 वाली पहली बात रखेंगे, फिर से हमको 9 से भाग देना है, तो क्या जो कुछ संख्या आएगी तो बहुभाग कितना होगा, उसको माइनस करके जो बचेगा वो, तो एक भाग निकालने के लिए 9 से भाग देते हैं, और बहुभाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद है किससे गुणा करना है, अभी ये छोड़ दो, 10 की बात देते, 10वां भाग है, तो इसमें एक भाग की वैल्यू है 10 और बहुभाग की वैल्यू है 90, ये बहुभाग हुआ ना, तो यहाँ डायरेक्ट हमको निकालना है तो क्या करेंगे, ये बहुभाग है यानी एक माइनस करके गुणा करना, ख्याल में आई बात, ये फॉर्मूला है, देखो 500 के हम 25 से भाग देते हैं, कितने आए 25 × 2 = 50 20 आए, एक वैल्यू 20 है, रिमेनिंग कितने हैं 480, तो 480 डायरेक्ट निकालने के लिए 25 से भाग दो और 24 से गुणा करो, बराबर है। अब यहाँ क्या बताया, अभी इसको पढ़े, अभी डायरेक्ट हमको विग्रह गति वाले की संख्या निकालनी है, तो संसाधन वाले हम संसाधन राशि लिखेंगे, ये संसाधन राशि पहले उसको आवली का असंख्यात भाग दिया तो ये उपपाद राशि आई, उपपाद राशि को फिर आवली का असंख्यात भाग, देखो फिर पढ़ते पहले से, चौथी लाइन देखो, तीसरी लाइन में हमने देखा था आवली के असंख्यात भाग से खंडित करके एक भाग आएगा वह राशि उपपाद है। अब आगे उससे इस उपपाद राशि के असंख्यात बहुभाग प्रमाण जीव विग्रह गति से उपपाद करते हैं, यानी इसमें असंख्यात का भाग देके इस राशि को असंख्यात का भाग देके एक कम असंख्यात से गुणा करेंगे तो हमें टोटल विग्रह गति वाले उपपाद वाले मिलेंगे। ये वाक्य अभी हम जो पढ़ा ना करेक्शन के बीच में दंड निकाल दी उसके अभी पढ़ेंगे दोबारा। देखो इसलिए इसलिए क्या करना, दो बार आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ओग राशि के भागहार स्थापित करने चाहिए। ये भैया ओग राशि ने सा लिखा हमने और नीचे दो बार नौ लिखा, भागहार में दो बार नौ लिखा, पाटी में देखना ये सासाधन राशि दो बार नौ से भाग दिया, दो बार आवली के असंख्यात वे भाग से भाग दिया, दो बार यहाँ भागहार स्थापित करना चाहिए तथा अभी और एक रह गया, एक कम आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ऊपर गुणकार स्थापित करना चाहिए यानी ऊपर आठ स्थापित करना चाहिए, ये उसका अर्थ होता है। क्यों किया है समझ में, जो ये राशि आई उसको फिर असंख्यात से भाग दिया और एक कम असंख्यात से गुणा किया तो उसका अर्थ हुआ असंख्यात बहुभाग प्रमाण राशि आ गई। अभी करके दिखाया था ना हमने बहुभाग कैसे निकालना, किसी संख्या से भाग देते हैं और उसमें से एक भाग बाजू निकालो और हमको बहुभाग चाहिए तो क्या करना, एक कम उस राशि से गुणा करो, यानी जो इसे हम उस आसाधन के लिए अलग और चौथे गुणस्थान के लिए उसकी राशि अलग। समझ यह वाक्य का अर्थ समझ में, भागार में दो बार आवली का असंख्यात्व भाग लिखना और गुणकार में एक कम आवली का असंख्यात्व भाग लिखना, एक बार भाग देंगे तो उपपाद राशि आ गई, दोबारा भाग देके बहुभाग निकालना है तो उपपाद में विग्रह गति वाले राशि आ गई, विग्रह गति वाली में ही वो पूरा दंड फैलता, एक ही समय में यहाँ मरण हुआ, यहाँ सभी आत्म प्रदेश आते और एक ही समय वहां सारे आत्म प्रदेश वहां पहुंच जाते तो फैले नहीं रहते, इसलिए विग्रह मोड़ वाली गति में क्या करना है, वो वहां से वो दंड उसका बना रहता है, या मारणांतिक करके विग्रह करने वाले उसमें और वो दंड पूरे दो तीन दंड फैले रहते हैं, उसकी बात लेना
कितना छोटा है ना उसमें
है ना, एक एक समय में दो मोड़ हो गए तो दो समय लगेंगे, एक मोड़ होगा तो यानी उसके मोड़ तक जाने के लिए देखो आवली का संख्या तो भाग के लिए हमने नौ मान लिया माइनस वन ये वाक्यों का अर्थ फिर हमको देखना है बस, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़े, जगत श्रेणी के संख्यात्वे भाग लंबे दूसरे दंड में स्थित जीवों की अपेक्षा, दूसरा दंड में स्थित यानी पहले मोड़ तक आ गए, पहले समय में प्रदेश, अब ये मारणांतिक करके जो उपपाद करते हैं उसका दूसरा दंड भी फैला है। देखो अभी नरक में तो कोई नहीं जाते पर नार की तिरंश में आते हैं, या देव नीचे मनुष्य में तिरंश में आते हैं तो पहले मान लेते हैं ऐसा आड़ा फैला और फिर नीचे दूसरा दंड जो लंबा है वो जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग लिया। मारणांतिक में तो एकेंद्रीय में भी मारणांतिक करते हैं देव तो श्रेणी का कुछ भाग लिया संख्यात्वा भाग, श्रेणी कितनी होती है सात राजू, उसमें से संख्या तो भाग लेना है क्योंकि अन्य देवों की मुख्यता जहां लेनी है तो मैं मान लेते डेढ़ राजू आएंगे या दो राजू है जो कुछ है तो श्रेणी का सात राजू का संख्या तो भाग लिया वहां पर।
ये कैसे काउंट होगा, मारणांतिक रहेगा तो वो जन्म के समय तो मिथ्या हो जाएगा ना, मारणांतिक का ही काल
है। नहीं नहीं नहीं, मारणांतिक सभी जीव साथ
आएंगे तो
एकेंद्री की बात नहीं लेना वहां पर, मारणांतिक में एकेंद्रीय नहीं, उपपाद में एकेंद्रीय को नहीं ले सकते, मारणांतिक में ले सकते, उपपाद में तो हम वो तो हो गया सासाधन से मिथ्या दृष्टि हो गया पर हम अन्यत्र देख सकते हैं ना, कहाँ पंचेंद्रीय में उत्पन्न होने वाले यानी ऊपर से नीचे आए हैं या नीचे से छठे नरक के नार की तीर्यंशों में आ गए हैं तो 5,000 अजू की एरिया वहाँ पर भी तो होगी ना,
तो इसका मैक्सिमम 3 मोड़ हो सकते हैं ना।
3 मोड़ सूक्ष्म एकेंद्रियों के होते हैं,
तो
सांसाधन ऑलरेडी पंचेंद्रिय और वो तो पंचेंद्रियों में उत्पन्न हो गए ऐसा हम लेते अभी। हाँ, तो उसमें एक या दो मोड़, उससे ज्यादा नहीं लगते उनको। 3 मोड़ किसको लगते हैं? वो नीचे कोने में है कोई जीव, एक केंद्रीय है, सूक्ष्म एक केंद्रीय है, और उसको फिर ऊपर के किसी बाहर के कोने में जन्म लेना है, तो बीच वाले एक राजू एरिया में आना पड़ेगा, ऊपर जाके फिर आउटसाइड में चले जाएंगे, और फिर और हो सकता है कि दक्षिणोत्तर जाना पड़े कहीं, इसलिए उनके 3 मोड़ लगते हैं। इसलिए क्या कहा, जगत श्रेणी के संख्यात वे भाग लंबे, दूसरे दंड में स्थित जीवों की अपेक्षा फिर भी आवली का असंख्यात वा भाग भागहर स्थापित करें, क्योंकि दूसरे दंड की अपेक्षा उसमें भी और कम जीव उसमें हो गए, और ऊपर घनांगुल के संख्यात वे भाग को निकाल कर उसके स्थान में प्रत्रांगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण और संख्यात प्रत्रांगुल प्रमाण गुणकार को स्थापित करके कुछ कम डेढ़ राजू से गुणित करके, कुछ कम डेढ़ राजू क्योंकि हमने यहाँ देखा था, यहाँ मुख्यतः किसकी ली थी हमने, है ना, ना, ना सौधर्म ईशान की, वो डेढ़ राजू ऊपर है, और पूरा डेढ़ राजू तो उसका ध्वजदंड आता है, इतने ऊपर कहाँ रह रहे हो, थोड़ा कम करना उसमें से, तो कुछ कम डेढ़ राजू से गुणित करके अपवर्तित करना चाहिए, क्योंकि मध्यलोक से सौधर्म कल्प डेढ़ राजू ऊंचा है, मुख्यतः उनकी है, उनकी अपेक्षा से कैलकुलेशन चल रहे हमारे। मारणांतिक समुद्घात का भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपने अपने गुणस्थान संबंधी राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण राशि मारणांतिक समुद्घात करती है, वहां उपपाद निकाली थी, यहाँ मारणांतिक लिया, क्योंकि यानी वो कितने दूर तक जा सकते हैं मरकर, ये उपपाद में उसका जो दूसरा दंड लिया, अपने अपने उत्पन्न होने के ठिकाने तक वो फैले हुए हैं, इसलिए वो दंड इतना श्रेणी का संख्यात्व भाग लिया। परंतु ऐसे जीव कम हो गए ना, इसलिए उसके लिए जो अभी हमने पहले सासाधन को 2 बार 9 से भाग दिया था, 1 बार 8 से गुणा किया था, तो यहाँ और 1 9 से भाग देना, उनकी संख्या और कम होगी दूसरे दंड में जो पाए जाते हैं। और ऊपर घनांगुल के संख्यात वे भाग को निकालकर, घनांगुल का संख्यात वा भाग जो हमने पहले कैलकुलेशन किया था ना, प्रमाण घनांगुल का संख्यात वा भाग आया था 41 पेज पर, जो संख्या जो हमने करेक्शन की थी, ऊपर कोई संख्या नीचे बड़ी संख्या है, यानी छोटी है ना, एक से एक का कुछ भाग है, नहीं समझते, ये तो अपूर्णांक जो है, जैसे हम कहेंगे ना अभी कोई भी ले लो, या आगे की संख्या छोड़ दो, 9/48 होता, समझो 9/48 होता, तो 48/48 एक होता है, यह 9/48 है, वो उसका संख्या का भाग हो गया, समझ में है ना, यही बात यहाँ कहते हैं। सेकंड लाइन में क्या लिखा है, यह राशि 41 पेज पर सेकंड लाइन पढ़ो, यह राशि क्या है, प्रमाण घनांगुल के संख्यात्वे भाग हुई, समझ में आती बात यहाँ पर, ये किसकी राशि निकाली थी, देवों की, यानी एक देव की अवगाहना, एक देव की इतनी, तो पूरे देवों की राशि की पूरी राशि निकाली थी, इस राशि को आवली के असंख्यात भाग से भाग दिया था तो उपपाद राशि आई थी, फिर उसके आवली का असंख्यात भाग से भाग देकर एक कम से गुणा किया था तो हमको मारणांतिक की राशि आई थी, मारणांतिक की आई थी ना, वो विग्रह वाली उपपाद आई थी, सॉरी। अब उसको अभी क्या करना है, मारणांतिक के लिए, यानी वहां जो दूसरे दंड में स्थित के लिए क्या करना है कि उनकी राशि और कम हुई, यानी भागाकार बढ़ते गए। तो अभी ऊपर हमने क्या किया था,
एक कम से एक,
हाँ, तो ऊपर हमने अभी जो घनांगुल का संख्यात्व भाग लिखा था, घनांगुल के संख्यात्व भाग प्रमाण हमारी टोटल राशि थी शासाधन वगैरह की। अब उसके बदले यहाँ लिखना है प्रत्रांगुल का संख्यात्व भाग, यानी वो राशि कम होती चली जाती, इसलिए ऊपर लिखना प्रत्रांगुल का संख्यात्व भाग,
नीचे की राशि बढ़ती
जाएगी। हाँ, और संख्यात प्रत्रांगुल प्रमाण गुणकार को स्थापित करना है, यानी टोटल राशि में से मारणांतिक कितने करते हैं उसकी अपेक्षा से ये बात लेना है। टोटल राशि तो ज्यादा होगी, मारणांतिक तो कुछ लोग करेंगे, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम तो सात साधन और चौथे गुणस्थान वाले होंगे ना, उनकी संख्या ज्यादा होगी, और उसी गुणस्थान में मारणांतिक करने वालों की संख्या बहुत कम होगी, इसलिए वो गुणकार कौन से वो अलग अलग उन्होंने बताए, क्योंकि राशि टोटल राशि से तो ये मारणांतिक करने वाली राशि कम है, इसलिए वो अलग अलग गुणकार वहां बताए। अब शंकाकार पूछते थे नीचे, यहाँ लिखा है अपने, ये जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसकी लास्ट लाइन क्या थी, देखो, इतनी विशेषता है कि अपने अपने गुणस्थान संबंधी राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण राशि मारणांतिक समुदात करती है, क्योंकि उस गुणस्थान में जो रहते हैं जी वो लंबे काल तक रहते हैं, मारणांतिक का काल छोटा है, और सभी जीव मरण के समय ही वो साधन में आएगी, ये बात कहाँ होती है, कभी भी हो सकता है, जब प्रथम उपशम किया गए साधन में आ गए मिथ्यात्व में चले गए, मरण के समय जो करते हैं और उसमें भी जो मारणांतिक करते हैं उनकी संख्या बहुत कम होगी, ये कहना चाहते हैं। अब शंका, मारणांतिक समुद्घात के काल से गुणस्थान का काल संख्यात गुना है, इसलिए मारणांतिक जीव अपने अपने गुणस्थान के सर्व जीवों से संख्यात गुणहीन क्यों नहीं होते, ये उनका प्रश्न है। यहाँ असंख्यात वे भागे ने असंख्यात गुणाहीन कहा, तो कहते वो तो संख्यात गुणा कहना चाहिए, क्योंकि मारणांतिक का काल है अंतर्मूर्त और वो जो गुणस्थान का काल छियावली समझो है उसका समाधान नहीं, क्योंकि मरण करने वाले जीवों से उसी भव में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं। मैंने बताया ना कि पूरी लाइफ टाइम तक कभी भी प्रथमोपशम करके साधन में आए और साधन में से मिथ्यात्व में जाएंगे, और ऐसे जीव बहुत कम होंगे जो एकदम मरण के एक अंतर्मूर्त पहले प्रथमोपशम करके साधन में गिरे हैं और साधन के साथ मारणांतिक किया है, इसलिए उनकी संख्या इतनी अल्प हो जाती है। अथवा उपशम सम्यक्व के काल प्रमाण आयु के अवशिष्ट रहने पर उपशम सम्यक्व गुण को प्राप्त होने वाले बहुत जीव नहीं पाए जाते, यानी उपशम ही सम्यक्व लाइफ टाइम में कभी ना कभी प्राप्त करने वाले जीव बहुत हो गए, एकदम लास्ट में प्राप्त करना है मरण के अंतर्मूर्त पहले, क्योंकि उस काल में ही वो साधन में जा सकता है, यानी एग्जैक्ट उतना काल बाकी है मरण को और वो साधन में गया और साधन के साथ मारणांतिक किया, कहते वो जीव बहुत अल्प हो, और मारणांतिक समुद्घात के काल से गुणस्थान का काल संख्यात गुणा होता है ऐसा कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम जरूरी नहीं है, मारणांतिक अंतर्मूर्त है, हो सकता है साधन का काल एक दो समय भी हो, ये भी हो सकता है, और चौथे गुणस्थान का काल तो पूरा इतने सागरों का होता है, ख्याल में आती है, तो वो संख्यात गुणा ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं, इतनी बात बता दी। यहाँ पर उपरिम राशि का गुणकार पूर्वोक्त ही है, क्योंकि यहाँ देव राशि की प्रधानता है, उपपाद में तो तिर्यंच राशि प्रधान है, उपपाद में ने सासादन के उपपाद में तिर्यंच राशि प्रसन्न, क्यों, तिर्यंचों में सासादन के साथ तो तीनों गति से आएगी जीव, देव भी आ सकते हैं मनुष्य भी आ सकते हैं नारकी भी सारे इतने आ जाएंगे, चौथे गुणस्थान में नहीं आएंगे इतने, चौथे गुणस्थान में देवों की प्रधानता होगी, चौथे के साथ मरकर जाने देवों में जाने, क्योंकि तिर्यंच इतने सारे देव में जाएंगे मनुष्य देव में जाएंगे, नारकी भले मनुष्यों में आएंगे पर उनकी एरिया फिर भी वो तो बीच में आके मनुष्य में आ जाएंगे, उनके एरिया भी कम कवर होती है। यहाँ देव राशि की प्रधानता है। हाँ, यहाँ ये तो टोटल में उपरिम राशि का गुणकार पूर्वक है, क्योंकि यहाँ देव राशि की प्रधानता है। ये मारणांतिक में लेना है, यह शासाधन में मारणांतिक लेना। उपोपाद में तो तिर्यंच राशि प्रधान है। इन्हें टोटल उपरिम राशि का गुणकार ने देव राशि की प्रधानता ने टोटल संसाधन की जो टोटल राशि है उसमें वहां मारणांतिक नहीं लेना। टोटल राशि सामान्य में हम कहते ना दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थानों में हमने देव राशि की प्रधानता देखी, यानी टोटल राशि। टोटल राशि में देव राशि ज्यादा है, देवों की प्रधानता है। उपपाद में तिर्यंच राशि प्रधान है। ये उपपाद सासाधन वाला उपपाद लेना, क्योंकि आगे लिखना है इतनी विशेषता है कि असंयत समय दृष्टि गुणस्थान संबंधी उपपाद में देव प्रधान है, क्योंकि मरकर देवों में समय दृष्टि ज्यादा जाएंगे उसके साथ, क्योंकि तिर्यंच वाले, क्योंकि तिर्यंच में सम्यक्त्व के साथ जाने वाले मनुष्य क्षायिक होगी, वो दो चार हो गए एट ए टाइम, कुछ संख्यात हो गए, तथा असंयत गुणस्थान संबंधी मारणांतिक समुद्घात में तिर्यंच प्रधान है। वो सासाधन में भी हमने उपपाद में लिया था, और असंयत गुणस्थान संबंधी मारणांतिक समुद्घात में तिर्यंच प्रधान है, क्योंकि देखो इसका अर्थ क्या है, कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है क्या? आपको नहीं समझ, मैं आपसे ही पूछूंगी। असंयत में उपपाद में देव प्रधान है, और मारणांतिक में तिर्यंच प्रधान है, वो मरकर कहाँ जा रहे हैं? तिर्यंच में, मारणांतिक कर रहे वो उस समय वो तिर्यंच है। तिर्यंच ने मारणांतिक कहाँ तक किया? देव में किया। तिर्यंच राशि मारणांतिक करके देव में जा रही है, वही अभी तिर्यंच रूप से मर गया, तो अभी उपपाद में उसी जीव को देव कहेंगे, बात एक ही है। मारणांतिक में जिसको हमने तिर्यंच कहा था, वो मारणांतिक कौन कर रहा है? तिर्यंच कर रहा है, वो अभी मरा नहीं है, समय दृष्टि है, अब ये देव में जाने वाला है, देव के वहां तक यानी वो स्वर्ग के विमान तक वो मारणांतिक उसके प्रदेश फैले है, तब उसको तिर्यंच राशि में इंक्लूड किया। अभी वो मर गया तो तिर्यंच नहीं हुआ, अभी तो देव हो गया, पहले समय में उसको हम देव कहेंगे, उपपाद में देव राशि प्रधान तक सेम है, वही राशि है जो अभी मारणांतिक कर रही थी, तिर्यंच कह रहे थे, वही उपपाद किया, देव हो गए। दो बातें नहीं हो? हाँ, एट ए टाइम असंख्यात होते हैं, अवली के असंख्यात भाग प्रमाण एक समय में कर सकते हैं। हाँ, और वहां तो अंतर्मूर्त काल है मारणांतिक का, थोड़ू थोड़ू आगे देखते देखो। असंयत गुणस्थान मती मारणांतिक समुदात में तिर्यंच प्रधान है, क्योंकि मारणांतिक के काल में वो तिर्यंच है, वे ही मरकर उपपाद में देव हो जाते हैं, यानी उनकी मुख्यता है। इसलिए असंयत में मारणांतिक में तीरंज प्रधान कहा और असंयत के उपपाद में देव प्रधान कहा। अब सम्यक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घातर उपपाद नहीं होते, ये हमने आपको प्रश्न पूछा था क्यों नहीं, क्योंकि इस गुणस्थान का इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं के साथ विरोध है, क्योंकि ये नियम है ना, इसमें मरण होता है ना आयु का बंध होता है ना मारणांतिक समुद्घात होता है, ऐसा ही उसका स्वरूप है। इसी प्रकार संयता संयतों का क्षेत्र जानना चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न है, संयता संयतों में मुख्यता किसकी लेनी है? तीर्यंचों की। मारणांतिक में लेने के उपपाद में लेनी है? उपपाद में चौथा गुणस्थान हो सकता है, पांचवा गुणस्थान उपपाद में किसी को नहीं होता, जन्म से कोई पांचवा गुणस्थान में नहीं जन्मता है। में देव भी समय दृष्टि मनुष्य में आएंगे तो जन्मते ही पांचवा गुणस्थान लेके आते हैं, क्या होता है? और यहाँ से कोई पांचवे गुणस्थान में मरकर देव में जाएगा तो चौथा हो जाता है, उपपाद में पहले समय में चौथा हो जाता है। अरे ग्यारहवें गुणस्थान में भी मरकर देव में चला जाता है, पहले समय में चौथा गुणस्थान होता है। श्रेणी में मरने वाले देव में जा रहे हैं ना, पहले समय में क्या हो जाता है? चौथा गुणस्थान।
तो ऊपर में पांचवा गुणस्थान नहीं है,
हो ही नहीं सकता, ऊपर के कोई गुणस्थान नहीं हो सकते। देखो उपपाद, अभी आप बताओ उपपाद में गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं?
उपपाद में
दूसरा, चौथा, पहला, पहला, तीन ही हो सकते हैं ना। इन तीन ही गुणस्थान से कई अन्य भाव में जन्म ले सकता है, ख्याल में आती है बात? ये सब हम पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं, अभी तो केवल कॉमन सेंस थोड़ा लगाना इधर उधर। तो यहाँ क्या कहते हैं, इसी प्रकार संयता संयतों का क्षेत्र जानना चाहिए, क्योंकि जब संयता संयत तीर्यंच देव में मारणांतिक कर रहे हैं वो तो सोलवे स्वर्ग तक कर सकते हैं कि नहीं? पंचम गुणस्थान वर्ती तीर्यंच मरकर सोलवे स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो जहाँ जन्म लेना है वहां तक मारणांतिक भी कर सकते हैं। तो मारणांतिक में उसको प्रदेश की वहां तक हम फैले हुए हम गिनेंगे, उसको उपपाद नहीं होगा, उसमें मारणांतिक होगा। पहला तो हमने स्वस्थान स्वस्थान देखा, विहार व स्वस्थान तीर्यंच जो है अपने एरिया में कहीं विहार करेंगे उसको ले सकते हैं, परंतु यहाँ मारणांतिक लेते हैं, उपपाद नहीं लेते, ना ही तेजस आहारक और केवली लेना है, वो तो उसके आउट ऑफ क्वेश्चन है। इतना विशेष है कि देखो आगे लिखा है, संयता संयतों के उपवाद नहीं होता, और उसका कारण भी क्या है, अपर्याप्त काल में संयमा संयम गुणस्थान नहीं पाया जाता, क्योंकि जो संयमा संयम पांचवा गुणस्थान है तो ये तो मनुष्यों में तो नहीं, आठवें साल के बाद प्राप्त होता है। हाँ, जो सम्मूर्छन होते उनके वो शोपशम के साथ हो तो अंतर्मूर्त में भी प्राप्त कर सकते, उनकी बात यहाँ नहीं लेनी है, यानी जन्म के समय तो उनके भी नहीं होता है। संयता संयतों की अवहंगना का गुणकार घनांगुल है, क्योंकि संयता संयत है मनुष्य तीरंच, अभी तीरंचों में ही लेना है, वो तो छोटी बड़ी अवगहन का एवरेज उन्होंने अवगहना घनांगुल लिया। मारणांतिक समुद्घात में प्रतरांगुल रूप गुणकार देना चाहिए, क्योंकि वो असंख्यात में भाग प्रमाण जीव मारणांतिक करेंगे तो घनांगुल के बदले प्रतरांगुल किया उसका। वैक्रिक पद से ये मारणांतिक उपपाद की बात हो गई, दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान की बात पहले बताई थी, उसमें कौन कौन से होते हैं वो सब बताए, अब यहाँ संयता संयतों की बात इसी प्रकार करना चाहिए। इसी प्रकार उनका स्वस्थान स्वस्थान विहार व स्वस्थान आदि बातें हैं, अब उसमें वैक्रियक पद से आवली के असंख्यात वे भाग रूप प्रतिभाग के द्वारा अपनी राशि का असंख्यातवा भाग लेना चाहिए, यानी कितने जीव वैक्रिक करेंगे तो अपनी राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण, वो कौन सा असंख्यात लेना, आवली के असंख्यात वे भाग से भाग देना। यानी ये जो यहाँ पर हमें संहिता संहितों में जो विक्रिया बताई है वो औदारिक शरीर की विक्रिया समझना और उसमें भी तिर्यंचों की प्रधानता लेना, क्योंकि असंख्यात से भाग देना है तो ऊपर संख्या भी बड़ी असंख्यात होगी कि नहीं होगी। फिर शंका, संहिता संहितों के वैकृत समुद्घात कैसे संभव है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि विष्णु कुमार आदि में जो हमें वेलनोनी उदाहरण मालूम है, विष्णु कुमार मुनि का तो मुनि थे, उनकी विक्रिया रुद्धि थी और फिर उसका उन्होंने उपसर्ग निवारण करने के लिए गृहस्थ अवस्था धारण की तो पांचों गुणस्थान में आना पड़ा कि नहीं, मुनिपद तो नहीं रहा, कपड़े धारण किए, वो जो कुछ चमत्कार दिखाया, तो कहते उनके विक्रियात्मक औदारिक शरीर देखा जाता है। क्योंकि संहिता संहित में विष्णु कुमार मुनि को क्यों लिया, वो तो अभी मुनि नहीं ना, वो मुनिपद छोड़ना पड़ा था जब उन्होंने विक्रिया दिखाई थी, मुनि होते हुए विक्रिया नहीं दिखाई थी। संहिता संहितों में भी मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त जीव राशि ओघ संहिता संहित राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। क्योंकि देखो करोड़ पूर्व की आयु है किसी की, तो अंतर्मुद कम करोड़ पूर्व को हो या अन्य कुछ थोड़े और काल कम करोड़ या कितने ही सालों की उनकी आयु रह सकती है पांचवें गुणस्थान में, और मारणांतिक समुदाय तो असंख्यात यानी असंख्यात समयों के लिए होगा, एक अंतर्मूर्त होगा मरण के पहले, यानी उसमें कितने कम जीव हो गया एट ए टाइम, ये कहना चाहते हैं। पांचवें गुणस्थान वाली टोटल राशि तुमने करोड़ पूर्व की आयु वाले कितने ही उसमें जीव आ जाएगा, असंख्यात हो गए, उसका असंख्यात वा भाग प्रमाण जीव मारणांतिक में पाए जाएंगे। इसके कारण का प्रारूपण पहले कराए हैं, यह हम उन्होंने सांसाधन से लेकर अयोगी तक की बात बताई थी सूत्र में, उसके एक एक गुणस्थान की चर्चा हो रही है। परमत्त संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक, इसमें सयोगी को छोड़ना है उसकी बात बाद में करेंगे, जीवों की जघन्य अवगाहना 3.5 रत्नी प्रमाण है, 3.5 हाथ रत्नी ने हाथ, इन्हें मनुष्य की जो छठे सातवें गुणस्थान वाले मनुष्यों की जो मिनिमम अवगाहना यहाँ दी 3.5 हाथ वाले, देखो चौथे काल के लास्ट में तो महावीर भगवान की तो 7 हाथ थी, अभी हमारी तो और कम हो रही है, परंतु पांचवें काल के अंत तक मुनि बताए हैं ना, तो उसकी जघन ने अवगाहना इतनी ले ली 3.5 हाथ। हाँ, और उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष है, ये तो मालूम है हमको 525 उत्कृष्ट अवगाहना होती है। कर्मभूमि के मनुष्य लेना ही यहाँ पर, क्योंकि मुनि अवस्था में तो वही होगे। हाँ, ये दोनों ही अवगाहनाएं बड़ी और छोटी भरत और अयोरा क्षेत्र में ही होती है, विदेह में नहीं, क्योंकि विदेह में 500 धनुष के उच्छेद का नियम है। देखो याद नहीं थी बात, 525 वाली भरत ऐरावत में होगी। हाँ, यहाँ लिखा होगा ना, विदेह में नहीं है 45 पेज, ये कुछ कुछ बातें बाद में याद नहीं रखती कहाँ आया क्या है, यानी 525 धनुष की अवगाहना भरत ऐरावत में ही होती है। और 3.5 हाथ की भी उच्छेद है, हाइट मैक्सिमम, जैसे बाहुबली भगवान की या आदिनाथ के काल में जो कुछ थी, तो कहते कि और मैगजीन ये मिनिमम कितनी 3.5, ये कहाँ का नियम है, क्योंकि अपने यहाँ हिनाधिक होती रहती है, परंतु विदेह में तो मैक्सिमम 500 की ही होगी, वो 525 वहाँ के नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। वो तो एवरेज वही उतना ही बताते हैं, उसमें जो कुछ हाइट का जो हिना दिखता होगी, जैसे हमारे यहाँ 6 फुट वाले हैं, कोई 5 फुट भी हो गए उतने हिना दिखता होगी, मैक्सिमम की बात है यहाँ पर, क्योंकि सारे करोड़ पूर्व वाले आयु और उसमें भी थोड़े कम भी हो सकते ना। यहाँ क्या लिखा देखो, विदेहस्थ दिसंयत, उसका अविनाभाव बताया, विदेह में 500 धनुष के उच्छेद का नियम है, नियम है बताए, नहीं 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 नियम बता रहे हैं, देखो देखो आगे देखते, देखो देखो अतः आगे पढ़ेंगे, 525 धनुष से कुछ कम उच्छेद वाली विदेहस्थ राशि, यानी 525 भरत ऐरावत की है, 500 ये उससे कुछ कम हुआ ना, तो 525 धनुष से कुछ कम उच्छेद वाली विदेह क्षेत्रस्थ संयत राशि चूंकि सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर वह राशि प्रधान है, क्योंकि विदेहस्थ संयत राशि का 500 धनुष की ऊंचाई के साथ अविनाभाव संबंध पाया जाता है। अविनाभाव बताया और संयतों का बताया, संयत है पांच छठे सातवें गुण स्थान वाले, यहाँ तो मुनियों की बात चल रही ना, इसलिए वही वही संयत हो गया, यानी वहाँ का 500 धनुष की ऊंचाई का नियम है ऐसा कह रहे, कुछ कम यानी 25 कम हो गए ना उनके, विदेह की राशि महत्व मुख्य है, क्योंकि यहाँ तो कभी कभी होता है चौथा काल या पांचवा काल, पांचवे काल में तो कम ही होगी, मैक्सिमम कब होती है यहाँ के चौथे काल में, तो उनकी राशि तो कम ही है ना, अपनी एरिया ही कितनी है और उनकी एरिया कितनी बड़ी और कितने विदेह है वहाँ पर, 160 तो विदेह है, तो राशि तो उनकी ज्यादा है, उनकी मेजोरिटी है, समझ में, उनकी मुख्यता प्रधानता उनकी है, और उसके 500 धनुष की ऊंचाई के साथ अविनाभाव संबंध बता रहे हैं। यहाँ पर अंगुलों में किए गए मनुष्यों के उच्छेद का 9वां भाग विष्कंभ होता है, यानी जो अंगुलों में नापते हैं उसका 9वां भाग, जैसे देवों में हमने 10वां भाग देखा, मनुष्यों में 9वां भाग लेना है, ऐसा समझकर विष्कंभ की परिधि को आधा करके और विष्कंभ के आधे से गुणित करके, अपनी भाषा में परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुणा करके, गोलाकार क्षेत्र की एरिया मिलती है उसको उच्छेद से गुणा करना पड़ता है, उच्छेद से गुणित करने पर संख्यात घनांगुल हो जाते हैं, यानी वो संख्यात घनांगुल यहाँ एरिया निकलती है, क्योंकि 500 धनुष के निकालने हैं ना, एक धनुष में कितने अंगुल हो गए, चौबीस अंगुलों का एक हाथ, चार हाथ का एक धनुष, 24 × 4, 24 × 4 = 96, तो एक धनुष के 96, तो 500 धनुष के कितने, समझ में आती है, इतने अंगुल, संख्यात अंगुल हो गए, उसको 500 के 500 बदले हम उसका प्रमाण अंगुल भी करेंगे, तो 500 चले गए ना, 96 तो प्रमाण अंगुल हो जाएंगे, तो अंगुलों में, घनांगुलों में उसकी, क्योंकि क्षेत्रफल हमने इससे 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 गुणा किया तो हमें घनांगुल में मिलेगा, उसको संख्यात घनांगुल कहते हैं। इन संख्यात घनांगुलों से अपनी अपनी राशि के गुणित करने पर, जो कोई संख्या उनकी होती सही है तो उनकी हम देखते कितने करोड़, 500 कुछ करोड़ होते हैं उनकी मैक्सिमम संख्या है, एक की अवगाहना इतनी, तो इतने 5 करोड़ वाले उनकी कितनी होगी, तो हमें वो टोटल एरिया मिलेगी ऊंचाइयों की। गुणित करने पर अपनी अपनी राशि ने उस गुणस्थान की राशि, ये छठे की कहो, सातवें की कहो, आठवें वगैरह की कहो, इच्छित गुणस्थान संबंधी क्षेत्र होता है। इतनी विशेषता है कि आहारक शरीर का उच्छेद एक रत्नी प्रमाण, एक हाथ है ना, एक रत्नी प्रमाण, रत्नी का अर्थ होता है हाथ, तथा उच्छेद के 10वें भाग प्रमाण उसका विष्कम्ब होता है, क्योंकि यह शरीर दिव्य स्वरूप है। देखो जैसे देवों में हमने उच्छेद के 10वें भाग प्रमाण विष्कम्ब देखा था, वैसे ही आहारक शरीर में उच्छेद के 10वें भाग प्रमाण उसका विष्कम्ब बताया है, यानी एक हाथ और उसका 10वां भाग उतना उसका विष्कम्ब। 24 अंगुल हाइट है तो 2.4 पूर्ण, वो तो उसकी जो अंगुल है उसकी उतनी विड्थ है, विष्कम्ब है। इसका विहार में संख्यात घनांगुल क्षेत्र होता है। संख्यात घनांगुल क्यों किया, उसकी जो एरिया अपनी अवगाहना है, और जाएंगे कितने, संख्यात योजन जाएंगे, क्यों आहारक शरीर संख्यात योजन क्यों जाएगा, ज्यादा क्यों नहीं जाएगा, 45 लाख योजन में ही तो जाएगा और कहाँ जाएगा, समझ में आती है बात। मनुष्य लोक में जाएगा ना आहारक शरीर, उसके बाहर तो नहीं जा सकता। नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, मनुष्य है वो मनुष्य क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते, ना उनको देव ले जा सकते, ना आहारक शरीर के साथ जाते, ना चारण दीदी जाएंगे, मनुष्य क्षेत्र में वो 45 लाख योजन में। हाँ, यहाँ से कोई विदेह जा सकता है, मनुष्य लोक के बाहर कोई नहीं जा सकता, इसलिए वो कितना है, 45 लाख योजन, यानी संख्यात योजन, उसके अंगुल करो तो भी संख्यात हो गया। तो एरिया इनकी अपनी अवगाहना मल्टीप्लाइड बाय संख्यात योजन, उसकी संख्यात अंगुल करेंगे तो संख्यात घनांगुल ही हो जाती है एरिया, क्योंकि मूल शरीर से वहां तक फैला हुआ वो पूरा इतना ले लेना, अवगाहना बड़ी हो जाएगी ना उसकी। तो विहार में संख्यात घनांगुल क्षेत्र होता है, उस समय इस शरीर का मुख अर्थात विष्कम्भ और उच्छेद स्वस्थान स्वस्थान के समान अवगाहना प्रमाण है, क्योंकि मूल और आहारक शरीर के अंतराल में पद्मनाल के अच्छिन्न सूत्र संतान के समान जीव प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, पद्म समझते, पद्म क्या होता है, कमल, पद्मनाल है ने क्या, कमल की जो नीचे की डंडी है वो कितना भी नीचे से लेकर जमीन से ऊपर पानी के ऊपर तक, कमल तो ऊपर है तो वहां से वो तक उसके अंदर से वो तंतु वहां तक फैले हुए हैं ना। देखो यहाँ फिर इसको वाक्य को पढ़ते, यानी वो शरीर का विष्कम्भ वगैरह कैसे बीच में जो आत्म प्रदेश फैले है वो किस पद्धति से फैले है, तो इस शरीर का मुख अर्थात विष्कम्भ और उच्छेद स्वस्थान स्वस्थान के समान अवगाहना प्रमाण है। वो शरीर तो छोटा है परंतु वहां तक जो आत्म प्रदेश फैले है उसकी बात है, वो स्वस्थान स्वस्थान की जैसे है, उसका जो शरीर जब मूल बन स्वस्थान यानी आहारक का स्वस्थान कहेंगे, वहां जितना बना उतने ही प्रदेश वहां तक फैले हैं, एक हाथ प्रमाण जो उनका शरीर बना है, और जहां तक विहार करके जाएंगे वो एक हाथ प्रमाण ही हो गए ऐसे फैले हुए, क्योंकि मूल और आहारक शरीर के अंतराल में, ये आहारक शरीर गया पर मूल शरीर के आत्म प्रदेश उसमें गए हैं ना, तो मूल शरीर में तो आत्म प्रदेश है ही और उसमें भी गए हैं, वहां तक गए हैं, तो मूल शरीर की जो अवगाहना है वैसे आत्म प्रदेश फैले है, हाइट वाइज नहीं बढ़ते, विष्कम्भ और उच्छेद उतना ही रहेगा उसका, क्योंकि मूल और आहारक शरीर के अंतराल में पद्म नाल के यानी कमलिनी के जो नाल होती है डंडी नीचे उसका अच्छिन्न यानी बिना टूटे हुए सूत्र संतान के समान, सूत्र यानी उसके जो वो अंदर धागे जैसे जो कुछ रेशाएं होगी उसकी, जीव प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है, यानी जीव के प्रदेश यहाँ से वहां तक पूरे अखंड रीति से ऐसे फैले हुए, स्ट्रेच हुए, जो जो कुछ आप उसका नाम, हाँ, उसमें कोई खंड नहीं है। शरीर से निकले हुए जीव प्रदेशों का फिर से शरीर में प्रवेश नहीं होता, सो भी बात नहीं है। क्या कहा, यानी अन्य समुदाय की बात है कि अभी शरीर से निकले तो क्या फिर शरीर में वापस नहीं आते? सब में आते, वेदना में भी आते, कषाय में भी आते, सब में आते, केवली के भी आते ना, मूल शरीर में प्रवेश कर जाते। क्योंकि ऐसा मानने पर, यानी प्रवेश नहीं होता ऐसा मानने पर, समुद्घात केवली के जीव प्रदेशों के साथ व्यभिचार आ जाता है, यानी दोष आता है। अगर ऐसा मानेंगे फैले और फिर मूल में नहीं आते ऐसा मानेंगे तो केवली समुद्घात घटित नहीं होगा। ये सब क्षेत्र सामान्य आदि चार लोकों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। ये प्रमत्त आदि की बात की, इसलिए प्रमत्त संयत आदि राशियां, आदि में संयोग केवली को छोड़कर बात है, चार लोकों के असंख्यात विभाग क्षेत्र में रहती है। हाँ, यानी पूरा लोक, चार लोक कौन से?
अधोलोक,
मनुष्य लोक की नहीं बात
की, अधोलोक, मध्यलोक,
हाँ, पूरा लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और तिर्यक लोक, उसके असंख्यात विभाग में। क्योंकि रहेंगे कहाँ रहेंगे? मुनिरा सर है, मनुष्य लोक में रहेंगे, तो क्या पूरे मनुष्य लोक इतना बड़ा करेंगे? तो मनुष्य लोक का भी संख्यात विभाग क्षेत्र ऑक्यूपाई करेंगे। एट ए टाइम इतने जीव हैं, एक जीव की इतनी अवगाहना है, तो मनुष्य क्षेत्र जो कितना है, 45 लाख योजन ऐसा गोलाकार है, उसकी हाइट 1 लाख योजन, तो उसके अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे उसका संख्यात विभाग सिद्ध हो जाता। इसलिए कहते हैं मनुष्य लोक कितना है, तो 45 लाख योजन का है। बाकी चार लोग जो संयत राशि है, भले छठी गुण स्थान की है, वो कितने? पूरे लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र में रहते हैं। ऊर्ध्व लोक का असंख्यात विभाग, अधो लोक का असंख्यात विभाग, तिर्यक लोक का भी असंख्यात विभाग, मनुष्य लोक का संख्यात विभाग है। मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए जिस अभिष्ट संयत राशि का क्षेत्र लाना हो, अभिष्ट संयत राशि यानी जिस गुणस्थान की बात है, उसे संख्यात प्रतरांगुलों से गुणित करके, यानी उसकी संख्या मल्टीप्लाइड बाय संख्यात प्रतरांगुल लब्ध आवे, उसे 7 राज्यों से गुणित करना चाहिए। इस कारण मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए संयत जीव मानुष लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। ये 4-5 लाइन हम कल फिर पढ़ेंगे, हम उसका अर्थ भी देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनं सदा